आय शीतल चरण आया शरणालयीन। आय गौरंग दया न छाड़ी हो, एकुले वो कुले मुई दिलु तिलम जली। एकुले वो कुले मुनि दिलु तिलांजलि, एकुले राखी हो चरण मोर अपना शीतल चरण पाया शद जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी।
सुबह की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के अंतर्गत हम लोग सातवें स्कंद के नवे अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक बोर्ड पर लिखा है, अब मैंने पीछे दोहराएंगे। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्य अन्य अन्य जन्म मरण अशन भीतभीतं पश्य जनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम हन्ते ते पारचर पिप्रीहि मूढं अद्य एवं स्वकर्म पतितं भव वैतृणाम एवं स्वकर्म पतितं भव वैतृणाम अन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतं अन्य जन्म मरणासन भीत भीतम पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैद मद्रम पश्यन् जनम स्वपर विग्रह वैद मद्रम अन्ते इति पादचर पिप्रीहि मूढमद्य एवं स्वकर्म पतितं भव वैतृणाम अन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम पश्यन् जन्म स्वपर विग्रह वैर मैत्रम अंते दीपार जद पिप्रिह मूढ़ मध्यः एवं स्वकर्म पतितं भवभवेत् नाम अन्योन्य जन्म मरणासन भीत भीतम् पश्यन् जन्म सपर विग्रह वैर मैत्रम् ते तिपार जद विप्रहि मूढ मध्य इस तरह स्वकर्म पतितम अपने भौतिक कार्यकलापों के फल के कारण पतित हुआ भाव इस अज्ञान जगत जन्म मृत्यु जरा व्याधि की तुलना में वैतरणी नाम वैतरणी नदी में जो यमराज के द्वार पर है अन्य अन्य एक के बाद एक जन्म जन्म मरण मृत्यु आसन विभिन्न प्रकार का भोजन भीतम अत्यधिक भयभीत पश्चन देखते हुए जन्म जीव को स्व अपना पर पराया विग्रह शरीर में वैध मैत्रम मित्रता तथा शत्रुता मानते हुए हंत आय हाय इति इस तरह पार चर मृत्यु नदी के दूसरे छोर पर स्थित आप पिप्रेह इसका पालन उनका तारण करके उनका पालन कीजिए उनको बचा ले मूढ़म आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हम सभी मूर्खों को अद्य आज क्योंकि आप स्वयं जब उपस्थित हुए हैं अनुवाद तात्पर्य श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा हे भगवान आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरे छोर पर स्थित रहते हैं किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं निसंदेह हम इस नदी में गिर गए हैं अजन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं अब कृपा करके हम पर दृष्टि कीजिए न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं और अपने हित की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए तथा हमारा पालन कीजिए तात्पर्य भगवान शुद्ध वैष्णव प्रहलाद महाराज से न केवल अपने लिए अपितु समस्त पीड़ित जनों के लिए प्रार्थना करते हैं वैष्णवों की दो कोटियां होती एक भजनानंदी और दूसरे गोष्ठानंदी भजनानंदी केवल अपने निज लाभ के लिए भगवान की पूजा करते रहते हैं लेकिन गोष्ठानंदी अन्य सबों को कृष्ण भावना तक ऊपर उठाना चाहते हैं उससे उनकी रक्षा हो सके ऐसे मूर्ख जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को दिख नहीं पाते वे इसके बारे में तनिक भी अस्वस्थ नहीं रहते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी निसंदेह ऐसे मूर्ख भौतिकता ग्रस्त दूरतों ने जीवन की अनुत्तरदायी शैली बना रखी है कि वे अगले जीवन के बारे में सोचे ही नहीं वे नहीं जानते कि अपने ही पाप कर्मों से मनुष्य को 84 लाख योनियों में चुन चुन करके शरीर प्राप्त करना होता है मगर गीता में इन धूर्तों को दुष्कृति न मूढ़ा कहा गया है जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है ऐसे भक्तों को पाप कर्मों में लगना पड़ता है इसलिए वे मूढ़ अर्थात मूर्ख तथा धूर्त है और ऐसे धूर्तों को ऐसे मूर्ख होते हैं कि उन्हें यह अभिज्ञात नहीं रहता है कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतेगी यद्यपि वे सब तरह के प्राणियों को घृणित प्राणियों और घृणित वस्तुओं को खाते और देखते हैं तथा सुवर मल खाते और मगरमच्छ सभी तरह की व्यर्थ की वस्तुएं खाने के कारण अगले जीवन में अत्यंत घृणित वस्तुएं खाने के लिए बाध्य होंगे जरा पढ़िए तो मगरमच्छ से ठीक है एक वैष्णव ऐसे गृहित जीवन से सदैव भयभीत रहता है अतएव ऐसी विभत्स दशा से उबरने के लिए वह अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाता है भगवान उन पर दयालु वे उनके हित के लिए अपने को प्रकट करते हैं। जदा यदाई धर्म सगड़ाने भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म सदात्मनम सजान्य। ये वर्तमान से जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती हो जाता अधर्म वृद्धित हो जाता है उस समय में स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवद्गीता 4:7। भगवान पतितात्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख तथा दुर्द होने के कारण कृष्ण भावना को ग्रहण नहीं कर पाते और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते। इसलिए यद्यपि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, किंतु वे कृष्ण भावना मत आंदोलन में उपदेश करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। जाल देख तार का कृष्ण उपदेश देते मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। हमारा आज्ञा गुरु है तार ही देश। चैतन्य चैतामत मध्य 7:128 श्लोक में लिखा है मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का उपदेश देकर कृष्ण भावनावृत का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति शपदं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नवैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतम् परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता विशाखन्वितंश्च मुखं करौ दिवाचालं पङ्गुमलङ्गजटगिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाध श्रीगुरुनदिनदा। जय तं सुरतपङ्गौर् मम मन्दमतेनगति मत्सदवत्सपदां भोजौ श्रीराधामदनमौ वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पश्चात देश एवं सकर्म पतित भवैतरिण्या अन्न जन्म मरणासन विभीत पश्चनम स्वपर विग्रह वैद मैत्र हंते दीपार चर पिप्रही मूढ़म अद्य। तो श्री प्रहलाद महाराज के द्वारा स्तुति का बहुत सुंदर श्लोक है और इस श्लोक में श्री प्रहलाद महाराज के जो जीवों के प्रति करुणा है वो करुणा झलक रही है या उनके हृदय में जीवों के प्रति जो कार्पण्य भाव है करुणा का भाव है वो भाव उमड़ रहा है। जब उन्होंने भगवान को कहा हे भगवान यही अच्युत मेरी जिह्वा अनेक प्रकार का भोग चाहती है और उपस्थ सुंदर स्त्रियों की ओर खींचता है, श्रवण बहुत सुंदर संगीत की ओर आकृष्ट होता है और मेरा घ्राण मेरा नाशिका इन भिनी भिनी खुशबू की ओर खींच रहा है और चपल दिक सुंदर दृश्य की ओर खींचता है और मेरी कर्म शक्ति एक और खींच रही है। इस प्रकार बहुया सपत्न इव गेहपति मनंती अच्युत मैं एक ऐसे व्यक्ति की तरह तो जिनकी 5-6 पत्नियां उनको अपने अपने शयन गृह में जैसे खींचती है एक ही आदमी को तो उसी प्रकार मेरी स्थिति है। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज ने सोचा कि मेरी अकेले की नहीं है सबकी भी बेचारे की यही स्थिति है जैसे मेरी है। तब एकाएक ख्याल आया श्री प्रहलाद महाराज को अरे सबके लिए स्तुति करना चाहिए मेरे अकेले के लिए नहीं। तब कहते एवं स्वकर्म पठितम भववैतरिणाम कहते के भगवान इस प्रकार भववैतरिणाम स्वकर्म पठितम जब इसका भोग करता है या जिस प्रकार जीवा श्रवण इंद्री इत्यादि का जीव उनके अनुसार खींचा चला जाता है तो इस प्रकार वह जाकर के अत्यंत भयावह भव वैतरणी में जाकर के गिर जाता है। क्यों न स्वकर्म पतितम वह अपने कर्म से पतित होता है। क्या कर्म है उनका तो उनका कर्म क्या है तो बोलते हैं स्वपर विग्रह वैर मैत्रम एक कर्म है। किसी को वो अपना समझता है और किसी को पराया समझता है और अपनों के साथ वो प्रेम करके आसक्ति के कारण उनसे बन जाता है और पराये व्यक्ति जो शत्रु के प्रति वो शत्रुकता का भाव रख करके वो फिर और एक विशिष्ट प्रकार की आसक्ति उनके प्रति होता है। लेकिन साधु लोग ये स्व और पर से अपने आप को ऊपर ले जाते हैं इनको साधु बोलते हैं। भजन करते करते सबसे पहले भगवत गीता में लिखी हुई इस समत्व की अवस्था आनी चाहिए अन्यथा हमारा भजन हवा है। जिस प्रकार हवा में हम हाथ मार के कुछ पकड़ना चाहते हैं उसी प्रकार हम लोग ये हवा को पकड़ना चाहते हैं भक्ति को पकड़ना चाहते हैं तो हवा है। कब तक जब तक व्यक्ति की ब्रह्मणे गवि हस्तिनी सुनिश्चित सौपाकित कैसे कैसे उस लोग है पंडिता समदर्शिना जब तक व्यक्ति की स्थिति भगवद गीता के अनुसार इन सम स्थिति नहीं आती कुत्ते हाथी और कुत्ते को खाने वाले चांडाल गाय में और ब्राह्मण में एक समान जीवात्मा है। उनका विचार, जब तक उनके माइंड में इस प्रकार का विचार स्थिर नहीं होता है, तब तक वो भजन या वो भक्ति उनके लिए हवा है। तब तक वो भजन वो भक्ति सात्विक राजसिक तामसिक कहलाएगी। या श्री कपिल मुनि उनको श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में बताते हैं, तमोगुण भक्ति नहीं है, भक्ति कभी तमोगुण नहीं, भक्ति तो त्रिगुणातीत वस्तु है, लेकिन उनको संपन्न करने वाले का हृदय अबद्ध है। और तदनुसार भक्ति का एक प्रकार बताया गया है कि वो तामसिक राजसिक या सात्विक भक्ति करता है, बाकी भक्ति सतगुण रजगुण नहीं हो सकती। कपिल मुनि बताते हैं कि भक्ति करते हुए भी जीव उन समान भाव को प्राप्त नहीं होता, नहीं हो करके मेरी पूजा तो करते रहते हैं लेकिन भक्तों के प्रति द्वेष भी करते रहते हैं, इसलिए उनकी जो पूजा है वो राख में हवन के तुल्य निष्फल होती है। अग्नि में जब हव्य दिया जाए तब तो कुछ फल होगा, लेकिन राख में कोई हवन देगा हवी, उसका क्या फल होगा? आग ही नहीं, मुख ही नहीं है भगवान का, क्योंकि अग्नि को भगवान का मुख बताया गया है और भगवान उन यज्ञ के रूप में हविष्य लेते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन है ही नहीं। तो बोलते मेरी पूजा वो बढ़िया से करते हैं लेकिन मेरे भक्तों के प्रति द्वेष भाव रखते हैं। तो वो कहते राख में हवन के तुल्य मेरी पूजा निष्फल जाती है। भक्ति निष्फल जाएगी? यस, पूजा निष्फल जाएगी। जिनको एक बार प्रणाम करने से करोड़ों खरबों अश्वमेध यज्ञ उनकी तुलना में कहीं नीचे हैं, लेकिन ऐसे भगवान की गई पूजा वो भी व्यर्थ बताते हैं। उसका अर्थ ये है कि जीव जब भक्ति करता है तो सबसे पहले उनका हृदय स्व और पर से परे निकलता है। ये मैं हूं और ये मेरा है, अहम ममेति, उनका हृदय छोड़ता जाता है भक्ति के प्रभाव से। साधु लोग के जीवन में ये देखा जाता है। देखिए यहां एक प्रहलाद महाराज अपने लिए प्रार्थना करते करते उनका पूरा भाव बदली हो गया। एवं सकर्म पतितम भव वैतृण, भगवान सभी लोग सबको देखिए पूजा के लिए। आगे तो वे भी कहेंगे मेरा कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मैं तो जान लिया है कि कैसे अगले श्लोक में बोलेंगे, अगले श्लोक है शायद न कोनो अत्र उसके आगे वाला न उद्विजित पर दुर्त वैतरण, मैं उद्विग्य नहीं हूं, वैतरणी नहीं वैतरणी क्या करेगी, क्यों? क्योंकि मैंने बोट में प्रवेश लिया। बोट क्या है ना? भक्तों का चरणारविंद, भक्तों की संगति रूपी बोट मेरे पास। वैतरणी वैतरणी क्या करेगी, बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र पार कर लेंगे, सक्षम नौका है, भगवत भक्तों की संगति रूपी एक सक्षम नाव, एक सक्षम उपाय या सक्षम साधन हमारे पास है। मुझे डर नहीं है, डर बस केवल उन लोग के लिए है कि जो अन्य जन्म मरना असन भीत भीत। वो ये जानते ही नहीं है कि ये जगत में मनुष्य जन्म जो मिला है वो मनुष्य जन्म इस अज्ञान अंधकार से पार निकलने के लिए है, ये जाने बगैर जो कर्म कर रहे हैं इसको मालूम ही नहीं। और जो व्यक्ति दुख को सुख करके, जिनकी बुद्धि उन दुखों को सुख की तरह आदर करती है, जब बैलेंस बढ़ता है बैंक में, ओ हो हो हो, अरे दुख बढ़ता है क्या, ओ हो हो, जितना बढ़ता है वो सारा दुख, क्योंकि छोड़ना तो पड़ेगा, कितना बढ़ा लो जितना बढ़ाओ उतना दुख बढ़ रहा है, क्योंकि छूटेगा। यस, मालूम नहीं, जगत वैतरणी है। यहां दुखों को सुख के आवरण में दिया जाता है, सुख एक आवरण लगा दिया जाता है और भीतर महादुख, उसके भीतर महादुख है और बाहर एक आवरण सुख का। लेकिन हाय रे जीव, इसको जानते हुए सुनते हुए भी कान बंद है, वो व्यवहार में नहीं लाया जा सकते। उनका लोभ, उनका क्रोध, उनका काम वैसा का वैसा बना रहता है भजन के बावजूद। इन लोग का बना रहे तो उसमें कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो यही है कि भजन चल रहा है और ये भी चल रहा है, ये भाव आश्चर्य का बात है। भजन के साथ साथ इसी भावना को हम ढोते रहते हैं, स्वपर भाव। और इसलिए कहते हैं अन्योन्य जन्म मरण असन भीत भीत माइए, हम लोग आचार्य के पास जाते हैं इस लाइन को समझने के लिए। ऊपर लाइन सीधा समझ में आ रहा है, एवं स्वकर्म पतितम बहुवैतरण, अपने कर्म से जीव इस प्रकार ये बहुवैतरण में गिर जाता है। लेकिन अन्यो अन्य जन्म मरण असन भीत भीतम, उसका अर्थ जानने के लिए हम आचार्यों के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि जन्म से मृत्यु और मृत्यु से जन्म, और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते अत्यंत भीत भीतम, अत्यंत भयभीत जीव इस संसार में हो रहा है। जबकि वो है अभय, उसका डिजाइन में भय नहीं है, ऐसी ड्राइंग है उनकी। क्यों? क्योंकि अमरत्व ड्राइंग में है। जीव की जो ड्राइंग है वो अमरत्व की है, अमर है भगवान की तरह, भगवान का अंश है। लेकिन भयम द्वितीय स्मृति में भगवान को भूलने से स्मृति में एक विपर्यास उत्पन्न होता है, विपर्य उत्पन्न होता है, वो विपरीत विपरीत बुद्धि। क्या विपरीत बुद्धि है? देह को सनातन और जीव को नाशवान समझना, विपरीत विपरीय हो गया है। भयम द्वितीय अभिनिवेश साथ, एक दूसरा अभिनिवेश है। अभिनिवेश क्या है? अहम मम इति, मैं ये देह ही हूं, इसलिए मैं देह के रूप में शाश्वत हूं और ये जीव, अजीव का तो जन्म मरण चलता ही रहता है लेकिन ये देह शाश्वत है। देखिए हमारे काम करने की, हमारे कर्म करने की जो शैली है वो ये बताती है। हम देह के लिए जितने केयरफुल है उतने आत्मा के लिए ठीक है, जान लिया तुम तो, 2 घंटा सोना माला जब कर लेंगे क्योंकि बाद में जितना भी काम है वो सारा काम अहम मम वो दूसरे का, ये वो है लघुचित साम इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अयम निजो अयम परो गणम गण नाम लघुचित साम उद्धार चैता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। ये लघुचित जिनकी चेतना सीमित है वो किसी को अपना सोचेगा? अयम निज अपना है और ये बदमाश है, वो उसका है, वो पार्टी का आदमी है। अयम नीच अयम पर लघु चेत, अत्यंत लघु चेतना, बहुत छोटा हृदय है, बहुत छोटा छुलक हृदय। बाहर से लगता है अरे इतना लंबा चौड़ा वो पानी भरा है इसमें, लेकिन वो पानी डीप नहीं है, जैसे वो चाय पीने वाले या वो दूध पीने वाला को रखा भी होता है और पूरा फड़ा है, लेकिन डीप नहीं है, डीप है ही नहीं, बाहर से लगता है अरे तो भक्ति से भरा है लेकिन डीप नहीं है। नाखून भी नहीं डूबेगा अंदर डालेंगे, थोड़ा लंबा नाखून है अंदर डूबेगा, उंगली टच नहीं होगा, क्योंकि चेतना अयम निज अयम पर लघु चेतस कहते हैं। उदार चरित नाम तो वसुदेव को, लेकिन उदार चरित श्री बल्ला महाराज इनका चरित्र देखिए, उदार भगवान की भक्ति करने वाले व्यक्ति का चित्त उदार होना ही चाहिए। अगर चित्त उदार नहीं होता है, उदार चित्त किसको कहते हैं, ना हृदय से ममता और हृदय से वस्तु का आसक्ति छूटता है, उनको उदार चरित्र बोलते हैं। उदार चरित्र जैसे श्री प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को पांचवें स्कंद में प्रार्थना करते हैं, न प्रार्थना करते स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खल्लः प्रसिद्धताम् अध्यायं तु भूतानि सर्वं मिथो धिया और मनश्च भद्रं प्रजताम् अदुक्षजे अविशिद्धाम् नो मतिर अपि अहेतुकी। श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, विश्व का मंगल हो, और जीव सोचेगा अपना कल्याण हो, बाकी जिए मरे जो कुछ भी करे हमारा क्या लेना देना। स्वस्य स्तु कैसे स्वस्ति अस्तु स्वस्य न तो विश्वस्य, स्वस्ति अस्तु स्वस्य, या अपना कोई है उनके लिए कल्याण का आशीर्वाद सबके लिए भक्त लोग देते हैं जो उदार चरित है। क्यों, वो समझते मेरी तरह जैसे मैं ये दुख का अनुभव करता हूं एक दूसरे जीव भी ठीक उसी प्रकार दुख का अनुभूति कर रहा है। इस संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसन्नता, वो कहते हैं खल दुष्ट को, दुष्टों का चित्त प्रसन्न रहे, वो लोग प्रसन्न रहे तभी विश्व में थोड़ा मंगल शांति थोड़ा बहुत शांति जो है वो आ सकता है। दुष्ट लोग प्रसन्न रहेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, किसी तो कहते हैं दुष्ट प्रसिद्धता अध्ययन तो भूतानि शिव मिथ, और सब प्राणी वो परस्पर कहते हैं सद्भावना भावित हो, वो सद्भावना और एक दूसरे की ओर या एक दूसरे का वो लोग हित चिंतक बने। ध्यान तो भूतानि शिव मिथो दिया, एक दूसरे का शुभ चिंतक बन करके वो रहे और कहते हैं मनश्च भद्रं भजताम, और हमारा मन है अदोक्षज शुभ मार्ग का अनुगमन करे। हम सबका मन तो इसी प्रकार सन्मार्ग का सन्मार्ग के ऊपर चला जा सकता है। कैसे चला जाएगा, तो कहते ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो दिया, प्रत्येक जीव एक दूसरे का शुभ चिंतक बन करके रहेगा। लेकिन इस शुभ चिंतन वाला मामला जब हृदय में खत्म है, और कितनी भी जप करे हम लोग, कितनी माला खींचे, कितनी पूजा करे भगवान की, हृदय पूर्वक भगवान की पूजा करे, लेकिन भगवान उनको पसंद नहीं करेंगे। भगवान ये नहीं कहेंगे ठीक है बेटा तुम योग्य हो गया, अपने नाम ले लूंगा, नहीं। अब जानते हैं जैसे श्री कुमारगण को रोका गया था, जैसे रोका उनको वो जा रहे थे वैकुंठ के द्वार के भीतर जा रहे थे, उधर जय और विजय खड़े थे। बोले अरे ये नंग धड़ंग ये वो अंदर कहा जा रहे, कपड़ा उपड़ा पहन जाओ। तो क्या कहा तो मन, बोले तुम यहाँ रहने के लायक, तुम यहाँ के लिए नलायक हो। क्यों नलायक है? क्यों? चूंकि तुम, तुम्हारे पास भेद बुद्धि है, तुम ईर्ष्यालु हो। जीव भगवान के पास मिलने के लिए जाता है और कोई उनका बाधक बने, अत जय विजय को श्राप मिला। अगर किसी दूसरे के प्रति, एक भक्त है और दूसरे भक्त के प्रति कोई ईर्ष्या और द्वेष का, वो जो आगे बढ़ रहा है तो उनमें उनका ईर्ष्या हो रहा है, द्वेष हो रहा है, तो कभी भी अपना कल्याण नहीं कर सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा कहते भद्रम मनश्च भद्रम भजताम अधुक, तब कहते हैं कि हम लोग का मन उन शुभ मार्ग में, भक्ति के मार्ग में स्थिर होगा। शुभ मार्ग अभिषिद्धाम नुमतिर अपि अहितु की, अरे भगवान हमारी बुद्धि का प्रवेश, अनासक्त होकर के हमारी बुद्धि आप में प्रवेश करे। अभिषिद्धाम नुमतिर अपि अहितु की, हमारी बुद्धि निष्काम होकर के आपकी भावना में प्रवेश करे, वो तब हो सकता है। बाकी संसार में जीव को उनके किए हुए कर्म, स्वकर्म पतितम, स्वकर्म पतितम, अपने कर्म को कर करके जीव यहां पर पतित होते हैं और उनको कुछ भौतिक आदर और भौतिक तिरस्कार, जो दोनों दूसरों का तिरस्कार किया है और किसी का आदर किया है, जिनका आदर किया वो व्यक्ति उनका आदर करेगा और जिनका तिरस्कार किया वो व्यक्ति उनका तिरस्कार करेगा, उसके लिए एक देह दी जाती है। इसलिए कुमारों ने कहा तुम लोग नीचे जाओ, नीचे जाओ, इधर वैकुंठ में रहने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा शरीर होना चाहिए कि कोई तुम्हारा आदर करे और कोई तुम्हारा अनादर करे। सप्तम स्कंद में इसको लिखा, निंदन स्तव सत्कार नकारार्थम करे ब्रह्म प्रधान पर जो राजन अभिविकन कल्पित। हे राजन, नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, ये जो जीव को शरीर दिया जाता है या वो जीव के पास जो शरीर है, वो अविवेक के कारण उन शरीर को ही अपनी आत्मा समझता है और इसी भूल के कारण उनको ये शरीर मिला है। क्यों मिला है? तो बोलते हैं निंदन स्तव, किसका निंदा और किसका स्तव ग्रहण करने के लिए शरीर मिला है, स्तुति ग्रहण करने के लिए, और सत्कार कहीं आदर और कहीं अनादर, ये देह दिया जाता है प्रकृति के द्वारा। जब वैतरण में पतित होते हैं तो वैतरण में तो दुख कारक होता है, वैतरणी यमराज जी के द्वार पर, सिद्ध साईं पाद कहते हैं यमराज जी के द्वार पर वैतरणी, और जहां पर जीव कष्ट ही कष्ट पाता है वो जिस नदी में, क्योंकि वह नदी पीब, इसमें मल मूत्र पीब, हड्डी खकार, जितनी भी गंदगी है वो सारी गंदगी बहती है, और उनको भूख प्यास जब लगती है जीव को तो वही खाता है और वही पीता है, दूषित पदार्थ सारे, भूख लगता है प्यास लगता है वैतरणी पार होने के समय। तो उसी प्रकार हम एक जन्म लेकर के वैतरणी की तरह डूबते उतारते रहते हैं, कोई क्या कहता है मेरे बारे में, उसने क्या बोला नलायक ने, ऐसा हिलते रहते हैं। और वो शरीर को बोला, आपको नहीं बोला, वो स्तुति निंदा के लिए दिया गया एक शरीर है, उस शरीर को गाली दे रहे हैं आपको, आपको तो देख ही नहीं पाता कैसे गाली देगा बेचारा, आपको तो देखता नहीं है, वो शरीर को देखता है। तो शरीर का गाली मेरा है ना, क्योंकि मैं ये देह हूं ना, हमारा हुआ कि नहीं गाली, तो लो। लेकिन भगवान बुद्ध उनके आचरण में देखा जाता कितना गाली दे रहे थे, कितना गाली दे रहे थे। एक व्यक्ति प्यासा व्यक्ति उनके पास पानी मांगा, वो पानी कुछ बुद्ध जी ध्यान में थे, वो पानी पानी उनको नहीं दिया, या उन कर्म की भीति से उनको ने ऐसा काम नहीं किया कि उनको पानी दिया जाए, तो कर्म बंधन लगेगा उनके साथ, वो मुझे पानी पिलाने के लिए आएगा फिर, और यहां मुक्त होना ने कहां सबके हाथ का पानी पिए, अतः वो कुछ डर के मारे, भय के मारे, या कुछ ध्यान में है, जैसे भी हो, उन्होंने कुछ आदर बादर नहीं किया। वो व्यक्ति लगा गाली देना, बोलते मैं उदिज्ञ कर दूंगा, समाधि का ढोंग कराना साधो, लगा गाली देना, इतना गाली, इतना गाली वो दे रहा था गाली, उनका गला बैठ गया, उधर कुछ फर्क ही नहीं हुआ, गला बैठ गया तो बोला नहीं जा रहा था, तब पानी का ग्लास लंबा गया, बोले इसको पी करके दो, ए लो पानी, इसको गला बैठ गया ना, पानी पियो और गाली दो, पी करके दो गाली। बोले ये कैसा आदमी है, इतना गाली दिया वो बोल रहा है पी करके गाली दो, पानी पी कर, जब पहले पानी मांगा था तो दिया नहीं, अभी पानी दे रहे पी करके गाली देने के लिए, जब मैं उनको गाली चालू किया तो पानी का ग्लास दे दे, कैसा आदमी। वो बोलता आपको कोई गाली लगा नहीं, मतलब जैसे तुम दे रहे हो, लेकिन मैं वस्तु लेता ही नहीं, वो वस्तु की किसके पास रहा, वो व्यक्ति समझा, अरे रे ये सब तुम्हारे पास रहा है, मैं तो लिया नहीं, मैं उनको ले जाना चाहता। और दूसरी बात, तुम जो कुछ भी बोल रहा था आदर करो सत्कार करो, मैं वो बाद में वो सत्कार चालू किया, तो सिंह ने समझाया बुद्ध ने कि ये जो सत्कार या नकार तुमने किया, तिरस्कार पहले किया बाद में आदर हो रहा है तेरा, लेकिन वो भी मेरे प्रति नहीं हो रहा है, अब वो तो मेरा शरीर के प्रति हो रहा है, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, तेरे साथ मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं क्यों तेरे से उद्विग्न होगा, और तुमको वो आदर करता है, व्यक्ति जब आदर करता है ना, अपना आदमी है, इधर चलो इधर साइड चलो साइड में, और जब उनका तिरस्कार कोई करते हैं बदमाश को देख लेंगे। ये भाव के बीच में ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो है वो तो बाह्य कष्ट है, लेकिन भीतर आधी ये आधी है व्याधि शरीर का है, शरीर में उत्पन्न होता है, लेकिन आधी उन भौतिक मन के प्लेटफॉर्म पर उत्पन्न होता है। तो आदर अनादर सब कुछ शरीर का है ऐसा कहते हैं, और कहते इसलिए हिंसा तद अभिमान दंडम पारुष्यम योजथा वैषम्यम भूतानम मम अहम इति पार्थिव। कहते जब इस शरीर को ही व्यक्ति अपनी आत्मा समझ लेता है, अपनी जात समझ लेता है, और तब तो कहते हैं इसी के कारण उनको ताड़ना, उसको दंड इत्यादि जो मिल रहा है, तो उसी के कारण लगने वाला दुख और सुख उनको तब तक है, और वो है अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण, वो ज्ञान के कारण। तो देखिए यहां कहते हैं एक आचार्य दिखते हैं, कहते भव्य वैतरणी यम लोक नदी तत्म स्वकर्म भी तो बोल दिया, भीत भीतम भीतार भी भीतम अस्यायम भाव। बोलते हैं जो भीत भीतम, एक तो बहुत डरा हुआ है, उस पर भी एक दूसरा डर, तीसरा डर, डर के ऊपर डर, डर के ऊपर लिंक है डर की भय की, तो ये कहते इसी भाव को कहते शत्रु नाम पुत्रादि जन्म नाम स्वस्य भयम। इधर भय क्या है, वो भय ये है, अपने लिए भय क्या है, बोले शत्रु कहीं पुत्र रूप में न आ जाए, बहुत बड़ा भय, और शत्रु जब पुत्र रूप में आया उनको मार भी नहीं सकते, उनको त्याग भी, ममता के कारण एक झूठी ममता होती है, उनको त्याग भी नहीं। एक दिन लोकायुक्त को बता रहे थे, उनको कोई किसी कोई कह रहा था, अरे मेरा बेटा बिल्कुल लफंगा हो गया, बदमाश हो गया। तो बोलते आप उनको धन क्यों देते, पैसा मत दीजिए। बोले अपना है ना, बदमाश होता आपके पैसे के बदमाश हो रहा, आप उनको सप्लाईमेंट करो। मतलब कैसे कर सकते, अपना है ना तभी करो। उनका बिगाड़ पैसे के कारण हो रहा है, लेकिन ममत्व के कारण अपना है। वो बोल रहे थे कि वो मंदिर में देना चाहिए वो धन, भगवान कभी भी आपका आप भगवान को बेटा मान करके आप उनको दो, कृष्ण को क्या दिक्कत है, कृष्ण को कैसे दें। कहीं शत्रु, ये लोग शत्रु लोग है, बेटा बन करके आते हैं बदमाश, कहीं का अगले जन्म में उनका बेटा बनूंगा, फिर देख लूंगा सारा संपत्ति सारा गाली किसका बेटा है, अरे वो बदमाश का बेटा है, बदमाशी होगा सारा बदनामी सब कुछ बाप को मिलता है, और है बेटा, कितना बड़ा दुख का बात है। इसलिए कहते हैं कि यहां भय क्या है, बोले भय सबसे बड़ा यही है कि शत्रु नाम पुत्र आदि जन्म नाम स्वस्य भयम। कहीं कोई शत्रु बेटे के रूप में ना आ जाए, ये भय है। अच्छा, और स्वस्य पुत्र आदि जन्म नाम परेशान भय, और खुद दूसरे का पुत्र बन करके उनसे शत्रुता भाव रखता है तो उसमें भी भय है, क्योंकि जन्म करके जिनके पास शत्रुता है उनका गुलामी करो, उनका बेटा बनो। स्वस्य भयम, अपने लिए भय है। देखो आचार्य लोग समझाते हैं भय क्या है, कहते जन्म जरा मृत्यु है, अरे ये भय तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा दुखकारक वस्तु ये ममता है। वो ममता के कारण, वो व्यवहार के कारण, स्व पर द्वेष के कारण व्यक्ति किसी का पुत्र बन जाता है, बदला लेता है पुत्र बन करके, ये सबसे बड़ा भय है, सबसे बड़ा भय है। बड़े बड़े राजा लोग अपने पुत्र के संताप के कारण राज्य छोड़ करके चल गए, यद्यपि उनका भला हुआ। जैसे महाराज वैन अंग महाराज, वो वैन के भय से अपने पुत्र के भय से छोड़ दिया था, ऐसा बदमाश लड़का, बोलता चलो चलो घर चलो, लेकिन हमारे पास न तो राज्य है और भाड़े का मकान है, और उनमें भी और बेटा बदमाश है, लेकिन बेटे को भी नहीं छोड़ सकते, इधर बढ़ने के लिए भाड़ा भी नहीं है, बेटा बिगड़ा हुआ है, और बेटे को त्याग भी नहीं सकते। कितना बड़ा, कितना दूषित। एक व्यक्ति हमको कहने में उनके घर में लेके गया, और बाद में हमको बोलता कि देखो हमारा बेटा बड़ा बदमाश, रात को 12-1 बजे तक वो घर में आता है, उनको कुछ समझाइए। मैं बोला समझाना उनको नहीं है, कितने टाइम से कर रहे हैं, बोलते वो बहुत गंदी आदत उनकी हो गई है और बहुत काल से वो आदत, मैं उनको नहीं समझाना है, मैं आपको समझाऊं। बोले समझे। मैं बोला बेटे को निकाल दीजिए घर से, वो हमको दोबारा प्रसाद के लिए निमंत्रण ही नहीं किया। बोले ये बदमाश है, मैं तो बेटे को निकालने के लिए बोल रहा है। मैं उनको समझाया अभी, कभी कभी शत्रु लोग बेटे का रूप लेकर के आते हैं, वो बोलता हाँ ऐसा होता है, लेकिन दोबारा प्रसाद के लिए नहीं बुलाया, और न तो उनके बेटे को समझाने के लिए बुलाया। अब मैं तो ठीक समझा रहा था, शास्त्र के अनुसार समझा रहा था, मेरा तो कोई गलती नहीं था। फिर एक दिन पूछा, तो आपका वो निमंत्रण का क्या हो गया, 2 साल के बाद में पूछा, वो आपका निमंत्रण का, बोले थोड़ा व्यस्त है इसीलिए। मैं किस में व्यस्त है, बोले बेटा जेल में चला गया इसीलिए व्यस्त है। बोलते बेटा जल गया है, मैं बोला आप तो नहीं मारा, अब पुलिस मार रहे। उस टाइम तो मैं आपको मारने के लिए बोल रहा था, आपको ताड़ना देने के लिए बोल रहा था, आपने निकाल दिया होता तो वो जेल नहीं जाता था। बोलते आइए आइए प्रसाद के लिए आइए। 3रे साल में एंट्री मिला वापस, प्रॉब्लम है। यदि भी भक्त भूखे नहीं है, ये नहीं है कि निमंत्रण मिलेगा ही मिलेगा तब उनको खाना मिलेगा, भगवान के अरेंज से मंदिर में बढ़िया खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा होता है। सत्य बात बोलने से लोग अनादर करना चालू करते हैं और सत्य बोलते हैं, बोलना ही पड़ेगा ना सत्य। एक दिन किसका पुत्र मर गया था, हम लोग मलाड में प्रवचन के लिए, काका और देख गया, काका बोलते आप अच्छा प्रवचन करना, मैं बोला ठीक है तो अच्छा ही बोलूंगा, जब किसी का मृत्यु है लोहा गर्म है थोड़ा ठीक मारूंगा। तो लोग दुखी थे तो मैं बोला देखो आप लोग दुखी मत हो, दुख तो शत्रु के द्वारा मिलता है ना, बोलते हाँ, अभी आप दुखी है ना, बोलते हाँ, तो आपका शत्रु मर गया आनंदित होइए, मर गया ना शत्रु। बोले अरे बदमाश कहीं के साधु लोग, तो काका बोलता है यार वो गड़बड़ कर दिया आपने, मैं बोला क्या गड़बड़ कर दिया यार, मैं तो ठीक बोला ना, मैं तो गलत नहीं बोला, ठीक बोला। अरे भाई अपना अगर मर जाएगा तो, एक व्यक्ति हमको ये भी बोला था, बोले पिताजी मर गया इसके आंख में आंसू नहीं है, पिताजी मर गए इनके, देखो ये तो बदमाश लड़का है पिताजी का, एक आंख आंख में आंसू नहीं गिरता है, हमारा पिताजी जब चले गए तब की घटना में बता रहा हूं, बोलते बदमाश है। तो कहीं जा करके रात को भजन कीर्तन रखा और 1 बजे तक समझाया तब दिमाग ठीक हुआ, वो भी घर वालों को, बाहर वाला तर्क कर रहे थे, एक दूसरे हमारे चाचा जो मास्टर थे स्कूल में, तो वो बोले तो रात को उपदेश कर रहा था लेकिन मुकुंद मर जाएगा तो है? तो तुमको तुम्हारा पिता मरने जितना दुख, मैं बोला उतना नहीं लगेगा जितना आपको लगता है, क्यों ना, क्योंकि हमारे पास रक्षा के लिए भगवान है और तसल्ली देने के लिए भगवान है, आप पास कोई माता आएगी नहीं, आप तो माता के पुजारी है, भूए हैं, अब पढ़े लिखे होकर के माता के भूवे बन गए, भगवान के भक्त नहीं बने, भूवे बने, तो आप तो भूवे हैं, माता आएगी नहीं, माता तो मारेगी, और बेटा रड़ो, आसक्ति देगी, ममता देगी माता, ध्यान नहीं देगी, लेकिन भगवान हमारे पास हृदय में परमात्मा के रूप में है, कुछ भजन कर लिया है, उतना दुख नहीं लगेगा जितना आपको लगेगा, वो व्यक्ति माना, मतलब बात ठीक है, गलत नहीं है, वस्तु तो ऐसा है, भगवान का भक्ति करने से व्यक्ति इन दुखों से ऊपर उठ जाता है, सारे दुखों से, ये अहंता ममता का जो दुख होता है, चाहिए थोड़ा थोड़ा एक दो मिनट और बढ़ा लेते हैं, बहुत सुंदर लिखा है, क्या स्वस्य पुत्र जन्म भयम और शत्रुभ्य स्वस्य मरण भयम, और कहते दूसरा कोई शत्रु है तो उनसे तो भय साक्षात लगता ही है, कहीं मार न दे है? उनका भय, और कहते स्वस्मात शत्रुनाम मरणम भयम, और खुद दूसरे के लिए मरण का भय बना हुआ है, परस्पर मीठ हो, इस संसार में लोग परस्पर ईर्ष्या करके या शत्रु और मित्रता का भाव करके कितने बड़े दुख ढो रहे हैं, ये कह रहे हैं कितना बड़ा दुख, व्यक्ति को इन सब पर से ऊपर उठना चाहिए। आर्य कहते हैं परकृत सौद्रव्य भक्षण स्वस्य भयम, और एक भय है कि दूसरों के द्वारा कहीं मेरा धन हर न लिया जाए, और दूसरे के लिए वो कैसे भय है, बोले स्वकृत परद्रव्य भक्षण परेशान भयम इति, और दूसरे का धन की ताप में व्यक्ति अपना बचा रहे और दूसरे का कैसे छीन लो, ये योजना चलती है, वो दूसरे के लिए भय है और ये इसका भय है कि ये छिन न जाए, और धन एक ऐसा वस्तु है कि वो एक ना एक दिन छूटेगा ही, कभी कभी व्यक्ति को धन छोड़कर चला जाता दिवालिया, कुछ नहीं रहा, ना गाड़ी ना बंगला, सब बेचना पड़ा, कई लोग को बेचना पड़ा था ना, मार्केट डाउन जा रहा था, तो और कभी कभी धन रहता है लेकिन आदमी के बाद आयुष्य कितना है वो नहीं रहेगा, धन रहेगा, तो जाना है, कुल मिलाकर के यहां जो हमारी आसक्ति बनती है वो सभी दुख है, कहीं पर भी बने, अहंता और ममता दुख का कारण होता है। ममता भक्तों में होनी चाहिए, ये भक्त मेरे हैं। कोई भी है, नवसिखी है से लेकर के भाव तक पहुंच गया है, ये सारे भक्त मेरे स्नेही हैं। और अहंता, मैं कृष्ण का हूं और कृष्ण के संबंध से वसुदैव कुटुंबकम, जितने लोग हैं वो मेरे भाई हैं। ये पवित्र भाव है। और जितने टाइम ये पवित्र भावना में आपका मन रहेगा, उतने समय दुख नहीं लगेगा। और दूसरा और एक लाभ हो जाएगा, भगवान को वो भाव बहुत प्रिय है। सम भाव कोई व्यक्ति का हृदय सम हृदय हो जाए, भगवान प्रसन्न होते। वाह, कम से कम ये माया से तो ऊपर उठा, ब्रह्मभूत तो हुआ। अभी किसी भक्त का उनका संग करा दूंगा मैं, ब्रह्मभूत हुआ, प्रसन्न आत्मा तो हुआ, दुख आत्मा था। तो इस सब कानून लिखे गए, वही स्वपर विग्रह वैरम। लेकिन कहते एक बात, हंटे थी पारचरम पिपरी मूडम, लेकिन हे प्रभु आप इन लोग के ऊपर कृपा कीजिए। हंटेटी का अर्थ कहते हैं, आप विचार कीजिए, आप तो देख रहे, ये जीव नहीं देखता है, लेकिन आप तो देखते हैं ना, कि उसके अज्ञान के कारण आप परमात्मा को भीतर सबको ज्ञान करा दीजिए, स्विच ऑन कीजिए खटाक से। ये कह रहे स्विच तो आपके पास है ना। और इसी बात को सुन करके श्री नरसिंह देव में बारंबार जब प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, नरसिंह देव के बोलने से एक ब्रह्मांड के जीवों का उद्धार कर दिया। और उन्होंने भी बोला, बोले एक ब्रह्मांड नहीं है, खाली बाली होने वाला नहीं, तुम मत सोचो कि पूरे ब्रह्मांड को खाली करवा दूंगा, कल भर जाएगा, कहीं से आकर के दूसरा भरने लगेंगे। चलो खाली मिला, खाली मिला, मालिकी का भाव है ना, बहुत जगह पड़ा है, आदमी कम है, वो आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम हम कहीं दूसरे ग्रह में भटक रहे थे, हमारा चांस, वो ऑन स्विच किया था भगवान ने, एक ब्रह्मांड के लिए ऑन कर दिया था स्विच, लेकिन हम लोग कहीं दूसरी जगह भटक रहे थे, भी दूसरे तीसरे ब्रह्मांड में होंगे, इसलिए अभी भी काट रहे आयुष्य यहाँ पर, हमारा कट रहा है, हमारा सत्व इत्यादि कट रहा है, माया काटती रहती है। लेकिन जो भक्ति करता है उनके सत्व को माया नहीं काट सकती। हरे कृष्ण, मंत्राज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, गिरिधारी भगवान की जय, आई गौर हरि विमानंदे अंशाकल्पतरुवश्वासिन्दुप्रतितं पावनेभ्यो वशिष्ठेभ्यो नमः। जय तो अच्छी लगती है, लेकिन जूता भी मिलता है।